हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है यहाँ। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया। और अब बहुत जल्दी हम लोग रामनवमी का उत्सव मनाने वाले हैं। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, उत्सव मानव प्रिय, उत्सव मनुष्यों को बहुत प्रिय है, क्योंकि उत्सवों में भक्ति का उत्साह बढ़ता है। कैसे भगवान के निकट जाना है, कैसे भगवान को प्राप्त करना है, कैसे उनके विषय में श्रवण करना है, ये सब उत्सवों में हम सीखते हैं। वैसे उत्सवों का यही एक उद्देश्य है। तो इसलिए अब आने वाले 5 अप्रैल को भगवान श्री राम का आविर्भाव दिवस है, रामनवमी का दिवस। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान जब प्रकट हुए, शुक्ल पक्ष था, अभिजीत मुहूर्त था, तो उनकी इस कथा को आज से प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनका गुणगान करेंगे। आज होगा, कल सोमवार है, महाभारत क्लास की जगह रामायण कथा चलेगी, फिर अगले रविवार और फिर सोमवार, फिर अगले रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक, जब तक रामनवमी का अवसर होगा। तो आप सबके लिए भगवान श्री राम की एक कथा को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। विनती है आप सबसे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, भगवान का विषय सुने। तो श्री रामचंद्र जी का विषय चर्चा करने से पहले उनको प्रणाम करना चाहेंगे। आप सबसे विनती है, आप हमारे पीछे पीछे दोहराइए, रामम रामानुजम सीता, भरतम भरतानुजम सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। हम प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम, श्रीमती सीता देवी को, श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को, भगवान के परम मित्र श्री सुग्रीव को और उनके परम भक्त वायु पुत्र हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान रामचंद्र जी की कथा ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों करोड़ों श्लोकों में गाई गई है। वाल्मीकि रामायण में थोड़ा कम ही कर दो, बहुत ज्यादा और कम कर दो, आवाज थोड़ी बढ़ा दो, काम कर दो। वाल्मीकि रामायण में केवल 24,000 श्लोक हैं। इसके अलावा आध्यात्म रामायण जो ब्रह्म पुराण का हिस्सा है, उसमें कई श्लोक हैं। ऐसे कई रामायण लिखी गई, तो इसीलिए कहा गया है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। चरितम रघुनाथस्य, भगवान श्री रघुनाथ श्री रामचंद्र जी का चरित्र शतकोटि प्रविस्तरम, करोड़ों करोड़ों श्लोकों में गाया गया है। एकैकम अक्षरम पुंसाम, लेकिन इसका एक भी अक्षर अगर हम जीवन में उतार लें, महापातक नाशनम, एक एक अक्षर इसका बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। इसीलिए रामायण की कथा की तुलना गंगा नदी से की गई है। वाल्मीकि गिरिसंभूतं रामं भो निधि संयुता श्रीमद् रामायणी गंगा पुनाति भुवनत्रयम्। ऐसा कहा गया है कि वाल्मीकि गिरि संभूतः, वाल्मीकि एक पर्वत की तरह है, रामम भो निधि संयुतः, जिनसे भगवान राम का चरित्र निकल रहा है, और श्रीमद् रामायणी गंगा, जैसे पर्वत से हिमालय से गंगा निकलती है, ऐसे ही वाल्मीकि से श्रीमद् रामायणी, श्रीमद् रामायण निकल रही है। और क्या कर रही है? पुनाति भुवनत्रयम्, तीनों लोकों को पुण्य करती है। जैसे गंगा ये तीनों लोकों में बहती है, जब ऊंचे लोकों में बहती हैं तो मंदाकिनी कहलाती हैं, इस पृथ्वी पर जब बहती हैं तो भागीरथी कहलाती हैं, और जब नीचे के लोकों में बहती हैं तो वही गंगा भोगवती कहलाती है। तो जैसे गंगा तीनों लोकों को पावन करती है, ऐसे ही रामायण भी तीनों लोकों को पावन करने वाली है। तो ऐसे भगवान राम की कथा है। हम लोग भगवान राम की कथा में उनके जन्म की कथा, उनके विवाह की कथा, उनके वन गमन की कथा कई बार सुन चुके हैं। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहे थे, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करते 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 श्री रामचंद्र जी पर आए, लेकिन उन्होंने रामचंद्र जी का विषय बड़े विस्तार से नहीं सुनाया परीक्षित महाराज को, थोड़ा सा संक्षेप में कह दिया बस। क्यों संक्षेप में कह दिया? परीक्षित महाराज से वो कहते कि रामायण तुम बहुत बार सुन चुके, अर्थात उस समय भी रामायण इतनी प्रसिद्ध थी कि घर घर में हर बच्चे को बताते। आजकल तो कलयुग बढ़ गया है, थोड़े समय बाद हमें बताना पड़ेगा रामायण क्या होती है, रामचंद्र जी कौन थे, क्योंकि बच्चों को आजकल उनको केवल कार्टून के रूप में दिखाया जाता है। तो जैसे बच्चों के लिए डोनाल्ड डक और जैसे उनके लिए मिकी माउस हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, सच में तो नहीं है मिकी माउस को, ये तो एक बनाया हुआ चरित्र है। तो क्योंकि बच्चों को आजकल कृष्ण और राम के भी कार्टून्स दिखाए जाते हैं, तो थोड़े समय बाद बच्चों के लिए जैसे मिकी माउस, जैसे डोनाल्ड डक, ऐसे ही एक काल्पनिक चरित्र हो जाएगा भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का। लेकिन पहले हरेक को ये कथा पता थी, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज से तुम बहुत सुन चुके, इसको नहीं सुनाऊंगा ज्यादा, आगे सुनते हैं और कथाएं। तो ये रामायण की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन बारंबार सुनने से ही आनंद देती है। वही चीज है, वही श्री राम का जन्म, वही उनका विवाह, वही उनका कैकई के द्वारा उनको वन में भेजना, लेकिन इन कथाओं में बारंबार सुनने से रस बढ़ता है। भगवान की कथा ये एक ऐसा फल है कि जिसको खाने से बारंबार रस बढ़ता है। इस जगत के जो फल होते हैं, हम लोग एक बार खा लें उसको, जैसे आम होता है उसको चूस कर फेंक दिया जाता है, फिर उसमें रस नहीं होता, फिर अब उसको कितना ही उसमें से निकालने का प्रयास कीजिए, रस नहीं निकलेगा। भगवान की कथा का ऐसा फल है कि जितना उसको खाते हैं, जितना रस लेते हैं, उतना रस बढ़ जाता है उसमें अपने आप। इसीलिए जब बारंबार उसको लिया जाता है तो नए नए रस का आस्वादन होता है। ये भगवान की कथा, इसीलिए श्री रामचंद्र के विषय में बारंबार सुनने से अलग अलग रस का अनुभव होता है। और साथ ही साथ जब हम भगवान की कथाओं को सुने, श्री रामचंद्र जी की कथा को, श्री कृष्ण की कथा को, तो उससे शिक्षाएं लेनी चाहिए। आप जब भी हर रविवार इस मंदिर में आते हैं, कथा सुनते हैं, चाहे किसी की ही कथा क्यों ना हो, भागवत से हो, पुराणों से हो, चैतन्य चरितामृत से हो, रामायण से हो, महाभारत से हो, कहीं से ही क्यों ना हो, आपको ये सोचना चाहिए कि आज हम रविवार को आए हैं तो यहां से क्या लेके जा रहे हैं। इस कथा से क्या अपने जीवन के लिए लेकर जा रहे हैं, तब कथा का लाभ होगा। ये नियम है शास्त्रों का। शास्त्र कहते हैं कि जब हम किसी राजा के पास, किसी अधिकारी के पास या भगवान के पास जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये पहले बहुत नियम था, आजकल लोग भूल गए हैं। भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं आया जाता, कुछ भेंट लाई जाती है। श्रील प्रभुपाद ने जब ये पहली बार पाश्चात्य जगत में थे, अमेरिका में, अपने भक्तों से ये बतलाया प्रभुपाद ने कि किस तरह मंदिर में खाली हाथ नहीं आया जाता है भगवान के मंदिर, तो बहुत से भक्त उस समय मंदिर ही रहते थे। तो अब वो सोचने लगे कि मंदिर में प्रवेश, हम तो बार बार आते हैं, यहीं रहते हैं, अब क्या हम मंदिर में प्रवेश करने के लिए बाहर जाएं, कुछ खरीदें लेकर आए फिर मंदिर में प्रवेश करें? तो उन्होंने एक अच्छा उपाय निकाला। उन्होंने मंदिर के बाहर एक छोटा सा कटोरा रख दिया जिसमें चावल नहीं तो फल भरे रहते थे हमेशा। तो जब भी वो प्रवेश करते मंदिर में, थोड़ा सा उसमें से लेकर आया करते, नियम का पालन। और साथ ही साथ ये भी है कि भगवान के मंदिर जब आए तो वहां से कुछ लेकर जाना चाहिए, भगवान के लिए लाना चाहिए और भगवान से कुछ लेकर जाना चाहिए। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि मंदिर के पंखे, मंदिर की लाइट्स, मंदिर की खिड़कियां, लोग कहें आपने कहा है मंदिर से कुछ ले जाना चाहिए, मेरे घर में खिड़की नहीं है, बस बढ़िया। नहीं, मंदिर से जाते समय हमें अपने जीवन में उतारने के लिए कुछ ऐसे संदेशों को, कुछ ऐसे निर्देशों को ले जाना चाहिए जो हमें जीवन में लाभदायक हों, जो हमें इस जीवन को कैसे जीना है उसको सिखा सकें, और साथ ही साथ इस जीवन को जीते हुए भगवान को कैसे प्राप्त करना है उसको सिखा सके। ये जीने की सच्ची कला है। कई लोग आपको जीने की कला सिखाते हैं कि ऐसे जियो वैसे जियो, चिंता मत करो। जीने की सच्ची कला ये है, क्या है कि हम इस जीवन को कैसे जिएं और इस जीवन को जीते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे करें, ये सच्ची कला है। अगर हमने ये नहीं सीखा, श्रम एव ही केवलम, जीवन व्यर्थ है। आपने कुछ धन कमाना सीख लिया, किसी को धोखा देना सीख लिया, आपने बहुत बड़ा बड़ा उद्योग करना सीख लिया, कुछ गाना सीख लिया, कुछ बजाना सीख लिया, मृत्यु के समय सब समाप्त। आपकी कला, आपका ज्ञान आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने भगवान को प्राप्त करने का मार्ग सीख लिया, जीवन सफल। भगवान कहते हैं इसको, श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की सफलता क्या है? क्या जीवन की सफलता कुछ धन प्राप्त कर लेना, पद प्राप्त कर लेना, मान सम्मान प्राप्त कर लेना? भगवान कहते हैं नहीं। कृष्ण कहते हैं बलराम जी से भागवत के 10वें स्कंद में, जीवन की सफलता क्या है? वो कहते हैं कि जीवन की सफलता है कि जब हम अपनी बुद्धि को, अपने प्राण को, प्राणे रर्थे धिया वाचा, इन सब को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, जीवन की सफलता ये है। इसीलिए अगर जीवन सफल करना चाहते हैं तो हमें भगवान का स्मरण करना सीखना होगा। तो इसीलिए आप जब हर रविवार को आए तो इसको एक मनोरंजन का कार्यक्रम मत बनाइए कि ठीक है वैसे भी रविवार को घर पर बैठे हैं, चलो थोड़ा बहुत मनोरंजन हो जाएगा, कुछ कीर्तन होगा, कुछ संगीत होगा, और थोड़ा बहुत एक घंटा कोई कुछ बोलेगा, कोई बात नहीं, सहन कर लेंगे। नहीं, इसको ये बनाइए कि आज रविवार है, आज मुझे जाना है मंदिर में और आज कुछ सीखना है मुझे अपने जीवन के लिए, तब मंदिर आने का लाभ होगा और तब इन कथाओं को सुनने का लाभ होगा। तो रामचंद्र जी की ये कथा हम अब प्रारंभ करेंगे, अरण्य कांड से। आप जानते हैं कि रामायण में कई विभाग हैं जिनको कांड कहा जाता है, जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, ये सब विभाग हैं, युद्ध कांड। तो एक विभाग है अरण्य कांड। अरण्य कांड मतलब अरण्य यानी वन, जंगल। भगवान जब जंगल में प्रवेश कर चुके हैं, भगवान कैसे गए ये अयोध्या कांड में हो गया, कैसे अयोध्या से उन्हें निकाला गया, कैकेयी ने क्या वर मांगे इत्यादि। अब भगवान जंगल में भीतर प्रवेश करते हैं, तो वहां से आप इस वर्ष की कथा को प्रारंभ करेंगे और जहां तक हो सकेगा रामनवमी तक ये चर्चा करेंगे। तो अयोध्या कांड के अंत में वर्णन आता है कि कैसे चित्रकूट में भगवान रह रहे हैं, और चित्रकूट में भगवान को मिलने के लिए भरत आते हैं। ये सब पहले हो चुका है। तो जब भरत आ गए, भरत चले गए, भरत के साथ भरत मिलाप बहुत सुंदर वर्णन है। श्री रामचंद्र जी मना नहीं कर पा रहे थे कि कैसे भरत को कहें कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। भरत का प्रेम इतना तीव्र था, भरत कह रहे थे कि आप जाइए, मैं रहता हूं 14 वर्ष यहां पर, 14 वर्ष ही रहना है ना एक पुत्र को, मैं रहता हूं, आप चले जाइए। भगवान नहीं माने। भरत ने कहा ठीक है, मैं भी आपके साथ रहता हूं। भगवान नहीं माने। भरत ने ऐसे बहुत सारे सुझाव दिए और अंत में भरत ने कहा कि अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, अब आप बताइए। तो ऐसे कई बार हो गया, फिर भरत को समझा बुझाकर भगवान ने भेज दिया, क्योंकि भरत चाहते थे कि बस राम ही राजा होंगे। भरत ने कहा मैं राजा कैसे हो सकता हूं आपकी उपस्थिति में, ये राज्य आपका है, सिंहासन आपका है, प्रजा आपकी है। तो जब भरत नहीं माने तो श्री राम ने कहा ठीक है मैं राजा बनता हूं। तो भरत खुश हो गए, सारी माताएं जितनी खड़ी थी खुश हो गई, मंत्री खुश हो गए, सारी प्रजा जो आई थी खुश हो गई कि रामचंद्र जी ने स्वीकार कर लिया वापस आना। राम ने कहा ठीक है मैं राजा बनता हूं, और अब राजा बनकर मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम जाओ और अयोध्या में राज्य करो। मैं राजा हूं इसलिए आदेश दे रहा हूं तुम्हें, जाओ मेरे प्रतिनिधि बनकर राज्य करो। और इसीलिए भरत उनकी खड़ाऊं लेकर गए थे श्री रामचंद्र की, और उन्होंने सिंहासन पर खड़ाऊं को रखा और खुद एक साधु के वेश में राज्य के बाहर एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहे। उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि अगर श्री रामचंद्र जी को राज्य का सुख नहीं है तो मैं भी उस सुख को नहीं लूंगा। ये प्रेम है। हम जिस प्रेम की बात करते हैं इस जगत में, वो प्रेम केवल आशाओं पर आधारित है, कुछ कामनाओं पर आधारित है, लेकिन सच्चा प्रेम एक दूसरे के लिए त्याग पर आधारित होता है। आजकल के समय में लोग राज्यों को छीनना चाहते हैं, भाई एक दूसरे का हिस्सा छीनना चाहते हैं, लेकिन रामचंद्र जी और भरत महाराज में झगड़ा हो रहा है कि मैं नहीं लूंगा आप लीजिए, आ वो कह रहे हैं मैं नहीं आप लो। ये सच्चा प्रेम है, जहां त्याग और वैराग्य की भावना है, जहां आशाएं नहीं है, जहां केवल अपने आप को संतुष्ट करने की भावना नहीं है, ये सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम ये वैराग्य पर, ये विरक्ति पर, और ये एक दूसरे के लिए त्याग पर आधारित होता है। जहां त्याग की भावना नहीं है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां केवल आशाएं हैं वहां प्रेम नहीं हो सकता, वो व्यापार है। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ कीजिए, ये व्यापार है। और इस जगत के जितने संबंध हैं सभी इसी भावना पर आधारित हैं। हर संबंध से कुछ आशाएं हैं, लेकिन भगवान से कोई आशा नहीं। अहेतुकी अप्रतिहता, भगवान की भक्ति में, भगवान के प्रेम में कोई आशा नहीं है। भगवान अगर आपसे प्रेम करते हैं तो क्या आशा कर सकते हैं आपसे? भगवान नहीं चाहते कि आप उनको कुछ दीजिए, भगवान के पास बहुत है। भगवान ये भी नहीं चाहते कि आप उनके एक नौकर चाकर के रूप में बने रहिए, भगवान के पास लाखों करोड़ों नौकर है। कोई कामना नहीं है भगवान की, लेकिन भगवान चाहते हैं कि आप सुखी हो, ये प्रेम है। तो भरत चले गए वापस। अब चित्रकूट में भगवान रह रहे हैं तो लोगों को पता चला कि भगवान चित्रकूट में है, रामचंद्र जी मिलने आ जाया करते थे। तो श्री रामचंद्र ने एक दिन सोचा कि मुझे अब चित्रकूट से जाना चाहिए। क्या कारण है जाने का? पहला कारण उन्होंने सोचा कि यहां पर मुझे अभी भरत मिलकर गया है, मेरी माताएं मुझसे मिलकर गई हैं और उन स्थानों को देखकर मुझे बार बार उनका स्मरण आ रहा है। बड़ा प्रेम था भगवान को भरत से, अपने भाई से, अपनी माताओं से, विशेष करके कैकई से। हां ये सत्य है, कैकई से बहुत प्रेम था भगवान को। तो कैकई भी आई थी मिलने, कौशल्या आई थी मिलने, सुमित्रा आई थी मिलने, बाकी सारे प्रजाजन आए थे। तो भगवान ने सोचा अभी अभी गए हैं, मैं उन स्थानों को देखकर बार बार उनका स्मरण कर रहा हूं, मेरी माता यहां बैठी थी, भरत से मैं यहां मिला था, तो अच्छा है मैं स्थान को त्याग दूं। दूसरा कारण उन्होंने सोचा कि भरत जब आए तो उनके साथ पूरी सेना आई थी और सेना में हाथी थे, घोड़े थे, रथ थे, बहुत सारे लोग थे, तो ये जो स्थान है ये दूषित हो गया है, क्योंकि ये स्थान, ये तो साधुओं का स्थान है, तपस्या का स्थान है, सुंदर पक्षियों का स्थान है, नाम उच्चारण का स्थान है, और यहां पर इस सेना ने आकर सारा दूषित कर दिया है, इसीलिए यहां नहीं रहूंगा। और तीसरी बात, बारंबार कोई ना कोई मिलने आता है, मैंने तो वचन लिया है कि मैं वन में रहूंगा एक वनवासी की तरह, लेकिन अगर ये लोग बारंबार अयोध्या से मिलने आते रहे तो मेरा वन में रहना संभव नहीं हो पाएगा। इस कारण से भी उन्होंने ये प्रण लिया कि मुझे अब चित्रकूट त्यागना है। और एक महत्वपूर्ण कारण था, भगवान देखने लगे कि चित्रकूट में रहने वाले जितने ऋषि मुनि हैं वो धीरे धीरे उनका भाव बदलने लगा, वो भगवान से दूर जाने लगे, चित्रकूट को त्यागने लगे। बड़े आश्चर्य की बात हुई, रामचंद्र जी सोचने लगे ऐसे कैसे, ये क्या हो रहा है। तो एक दिन उन्होंने सब ऋषि मुनियों को पूछ लिया कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग प्रसन्न नहीं हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि खर नाम का एक राक्षस है, रावण का भाई है, बड़ा शक्तिशाली है, उसे पता चला है कि आप यहां पर रह रहे हैं, इसीलिए वो बारंबार अपने राक्षसों को भेजता रहता है। हम लोग अपनी यज्ञ करने का प्रयास करते हैं, आहुति डालने का प्रयास करते हैं और वो सारी गंदी चीजें लाकर उसमें फेंक देता है, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि खर आपको कहीं कोई कष्ट ना दे, हमें तो क्या, हम तो साधु हैं, क्या कष्ट दे देगा, लेकिन आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, तो हमारे रहने से हमें कष्ट देने के लिए वो यहां आता है, अगर हम यहां से चले जाएंगे तो वो कष्ट देने नहीं आएगा, किसको कष्ट देगा। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे कि आपके ऊपर कोई कष्ट ना आए तो आप भी हमारे साथ यहां से चलिए। तो श्री रामचंद्र ने सोचा कि भले ही मैं वनवास में हूं लेकिन कर्तव्य मैं हूं क्षत्रिय, और क्षत्रिय का कर्तव्य है रक्षा करना, और ये वन भी तो संपत्ति है किसी की, किसी राजा के अधीन होना चाहिए वन। क्योंकि जब भगवान को वनवास हुआ था, भगवान ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, सब लोग रो रहे थे, अरे अरे क्या हो गया, वनवास भेज रहे हैं तुम्हारे पिता, लेकिन भगवान ने क्या कहा, श्री रामचंद्र ने कहा पिता दी ही मोहे, पिता ने मुझे वन का राज्य दिया, मुझे वन का राजा बना दिया, भरत को शहर का बनाया, मुझे इतना बड़ा वन दे दिया। तो अब उस भाव में सोचने लगे कि पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, मेरा कर्तव्य है। तो श्री रामचंद्र जी ने यह सोचकर चित्रकूट को त्याग दिया और फिर वो अंदर और गहरे वन में चले गए, अरण्य में, दंडक वन में, जिसको दंडकारण्य कहते हैं। भगवान दंडकारण्य में, दंडक अरण्य, दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं सीता देवी के साथ, लक्ष्मण के साथ। तो अब धीरे धीरे वो गहरे अंदर गहन वनों में जाने लगे और जाते जाते उन्होंने देखा एक बहुत सुंदर स्थान उन्हें मिला, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा सारे घबरा रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, प्राणी भाग रहे हैं डरकर, सबके प्राणियों के चेहरे पर एक भय है। और किस लिए डर रहे थे, वहां पर एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था विराट, तो उसको, उससे वो भयभीत हो रहे थे सब लोग, और भगवान उनको मारने का प्रयास अब करने वाले, भगवान उनको मारने वाले हैं। तो ये दंडकारण्य में हुआ। लेकिन जब भगवान दंडकारण्य की ओर जा रहे थे तो बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर वो गए, वो था अत्रि मुनि का आश्रम। अत्रि मुनि ये बड़े ही श्रेष्ठ मुनि हैं और उनकी पत्नी देवी अनुसुईया वो भी बहुत श्रेष्ठ हैं। जब सती स्त्रियों के नाम लिए जाते हैं तो देवी अनुसुईया का नाम भी लिया जाता है। देवी अनुसुईया, इनकी शक्ति इतनी है, इन्होंने अपने सतीत्व की शक्ति से इतनी शक्ति को प्राप्त कर लिया कि एक समय उस स्थान पर जहां इनका आश्रम है, आज भी अत्रि मुनि का आश्रम है चित्रकूट से थोड़ी दूर पर, तो अत्रि मुनि के आश्रम के पास एक समय ऐसा हुआ कि अकाल पड़ गया। अकाल जानते हैं आप लोग क्या होता है, कन्नड़ में क्या कहते हैं हमें नहीं पता यहां पर, लेकिन अकाल मतलब सूखा पड़ना, पानी नहीं होता। 10 वर्ष तक ये सूखा रहा, वर्षा नहीं थी। तो एक वर्ष वर्षा नहीं हो तो क्या होगा, 10 वर्ष नहीं थी। तो उस समय उस सूखे को रोकने के लिए देवी अनुसुईया ने अपनी शक्ति से मंदाकिनी अर्थात गंगा को आश्रम के पास प्रकट होने के लिए बाध्य किया। आज भी उनके आश्रम के पास नदी बहती है। तो गंगा प्रकट हुई और गंगा 10 वर्ष तक, बाकी सारे स्थानों में सूखा पड़ा था लेकिन अत्रि मुनि का आश्रम हरा भरा था। तो ऐसी देवी अनुसुईया हैं। तो भगवान राम सीता देवी के साथ गए, अत्रि मुनि ने स्वागत किया भगवान राम का, और फिर उन्होंने सीता देवी से कहा कि आप देवी अनुसुईया के पास जाइए, उनसे कुछ सीखिए। तो देवी अनुसुईया का गुणगान स्वयं अत्रि मुनि करते हैं। देखिए, साधारणतः हम लोग देखते हैं ऋषि मुनि अपनी ही पत्नी का गुणगान नहीं करते हैं, लेकिन जिन ऋषियों ने अपनी ही पत्नी का गुणगान किया है वो बड़ी श्रेष्ठ स्त्रियां रही हैं। तो अत्रि मुनि अपनी ही पत्नी देवी अनुसुईया का गुणगान श्री रामचंद्र के सामने करते हैं और ये बात बताते हैं कि जिस समय सूखा पड़ा था उस समय देवी अनुसुईया की शक्ति के कारण मंदाकिनी को यहां प्रकट होना पड़ा। तो अनुसुईया, वैसे तो इनके विषय में बहुत सी कथाएं हैं, कई पिक्चरें बन चुकी हैं, कई पता नहीं अभी कई सीरियल भी होंगे। तो इनका संक्षेप में वर्णन, देवी अनुसुईया के विषय में एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है, भगवान दत्तात्रेय का जन्म। तो ऐसे बताते हैं कि जब देवी अनुसुईया की सतीत्व, उनकी पतिव्रता होने का गुणगान नारद मुनि करने लगे, नारद मुनि सारे ब्रह्मांड घूमते और उन्होंने देखा अनुसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता स्त्री है, तो गुणगान करने लगे। तो फिर जब ऊपर गुणगान होने लगा तो पार्वती जी ने सुना, लक्ष्मी जी ने सुना, सरस्वती जी ने सुना कि ये कौन स्त्री है, इतना उसका गुणगान नारद मुनि कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने पतियों को कहा कि आप जाकर परीक्षा लीजिए देवी अनुसुईया की। तो क्या परीक्षा लीजिए, तो तीनों आए भिक्षुक के रूप में। ये एक कथा अनुसुईया के विषय में बताई जाती है, एक दूसरी भी कथा। तो आकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा चाहिए, तीनों सन्यासियों के रूप में आए। देवी अनुसुईया उस समय अकेली थी, अत्रि मुनि बाहर गए हुए थे, कोई आश्रम में नहीं था। तो देवी अनुसुईया भिक्षा देने आई, तो जब भिक्षा देने आई तो इन्होंने लेने से मना कर दिया। इन्होंने कहा हम किसी ऐसे, हमारा एक प्रण है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति से भिक्षा नहीं लेते हैं जिसने वस्त्र धारण किए हुए हैं। अगर आपको हमें भिक्षा देनी है तो बिना वस्त्र के देनी होगी। अब देवी अनुसुईया के लिए तो बड़े धर्म संकट हो गया कि तीन सन्यासी हैं, उनके सामने वो निर्वस्त्र तो हो नहीं सकती, और साथ ही साथ बिना भिक्षा दिए उनके अगर आश्रम से कोई चला जाए बिना भिक्षा लिए, तो ये तो उनके पति का अपमान हो जाएगा, और वो पतिव्रता स्त्री है, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान कैसे सहन कर सकती। श्रीमती सीता देवी भी जब आगे चलकर रावण को कुछ देने के लिए, भिक्षा देने के लिए आती हैं, तो इसी कारण से कि कहीं रामचंद्र जी का नाम खराब नहीं हो जाए कि उनके कुटिया में कोई आया और मांगा उसने और बिना लिए चला गया। देखिए हमारी वैदिक परंपरा कितनी महान है, केवल कोई भिक्षा मांगने आया है उसको भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो देवी अनुसुईया ने फिर विचार किया कि क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने थोड़ा सा जल लिया, अपनी पतिव्रता की शक्ति के कारण उन्होंने वो जल इन तीनों पर छिड़का। ये तीनों छोटे से बालक बन गए, और छोटे बच्चे को तो माँ जब दूध पिला देती है तो वो पिला सकती है, ऐसे बड़ों के सामने नहीं लेकिन छोटे को कर सकती है। तो छोटे बच्चे को उन्होंने बच्चा मान के उन्होंने दूध पिलाया उनको। तो अब उधर ऊपर तीनों इंतजार कर रही हैं कि हमारे पति आएंगे कुछ करके आए, वो आए ही नहीं। तब फिर वो आकर वो देखती हैं नीचे, तो देवी अनुसुईया ने उनके पतियों को पालने में बिठा रखा है, तीनों छोटे बच्चे पालने में लेटे हुए। तो खैर बाद में अत्रि मुनि आए और फिर सारी बात हुई, तब देवी अनुसुईया को वरदान मिला और देवी अनुसुईया के तीन संतानें हुई। भगवान दत्तात्रेय जो विष्णु से हुए, जो विष्णु के अवतार हैं, सोमदेव जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और दुर्वासा मुनि जो शिव जी के अंश अवतार हैं। तो ये तीनों संतानें देवी अनुसुईया की हैं। उनकी पतिव्रता की वर्णन एक और स्थान पर आता है, एक ब्राह्मण का वर्णन है, कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था, एक वेश्या से बड़ा आसक्त था और उसकी पत्नी पतिव्रता थी। तो एक समय बहुत वेश्या के पास जाया करता, धीरे धीरे उसके शरीर में कोढ़ हो गया, कहीं जा नहीं पाता था, लेकिन उसकी बड़ी इच्छा थी ऐसी अवस्था में भी उस वेश्या का संग करने की, और उसने अपनी पत्नी से ये बात कही और पत्नी ने कहा ठीक है मैं आपको लेके जाऊंगी। देखिए पत्नी की महानता, कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने ही पति को किसी वेश्या के पास लेके जाने के लिए तैयार है। लेकिन इसने कहा कि अगर आपकी प्रसन्नता है तो ठीक है मैं लेके जाऊंगी। तो उसने उठा लिया और लेकर जा रही थी, जाते जाते मांडव्य ऋषि वहां पर थे। मांडव्य ऋषि उस समय शूल होता है, शूल जानते हैं जैसे त्रिशूल कहते हैं ना, त्रिशूल में तीन शूल होते हैं, शूल मतलब एक होता है। तो उस पर लटके हुए थे। हुआ ये था कि मांडव्य मुनि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, चोर भागते हुए आए, पीछे सैनिक भी थे, तो चोर छुप गए इनके आश्रम में, सारा सामान छुपा दिया। जब सैनिक आए तो उन्होंने चोरों को पकड़ा और इनको भी पकड़ लिया कि ये भी चोर है, ले चलो इसको। और राजा से कहा कि हम चोरों को पकड़ के लाए, क्या करें। राजा ने कहा शूली पे चढ़ा दो। तो शूल होता है, शूली पे चढ़ाना मतलब शूल होता है, उस पर बिठा दिया जाता है, धीरे 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 आदमी उसी पे मर जाता है। तो मांडव्य ऋषि को भी, बाकी जो चोर थे वो तो मर गए, मांडव्य ऋषि मरे ही नहीं। तो उस समय जब वो लटके हुए थे उस शूल पर, तो उनका स्पर्श हो गया उस पुरुष से, कौशिक नाम के ब्राह्मण जो कोढ़ था। तो इनको बड़ा, जैसे ही टच हुआ तो वो और घूम गए, तो और ज्यादा दर्द हुआ, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ये व्यक्ति कल सूर्योदय होते ही मर जाएगा। अब जो इनकी पत्नी थी, बड़ी पतिव्रता थी, उसने सुन लिया कि ये सुबह होते ही, सूर्योदय होते ही मेरे पति मर जाएंगे, तो उन्होंने अपनी पतिव्रता की शक्ति से ये कह दिया कि सूर्योदय होगा ही नहीं कल। और सही में सूर्योदय नहीं हुआ। आप सोचिए, अगर सूर्य एक दिन नहीं निकले हैं, जो उत्तर भारत में रहते हैं उनको कभी कभी ये ठंड के समय अनुभव होता है, तीन तीन दिन सूर्य नहीं निकलते हैं, है ना, तो तब कितना सूर्य का वैल्यू पता चलती है। अरे अरे कितना अच्छा था धूप, हमें तो यहाँ कारोबार में लगता है कितनी धूप है, थोड़ा ठंडी होती तो अच्छा था। इस जगत में ऐसा ही है, कोई कहीं संतुष्ट नहीं, जो जहां है वो वहां से बदलाव चाहता। हम लोग यहां सुख संतुष्ट नहीं है कि बहुत गर्मी होती है, उत्तर भारत में जाएं तो बड़ी ठंडी होती है, वो लोग संतुष्ट नहीं, वो सूर्य को मांगते हैं। जिसके घर में लड़का हो जाता है वो लड़की की कामना करता है, और जिसके घर में लड़की हो जाती है वो लड़के की कामना करता है। जिसके घर में दोनों हो जाते हैं वो सोचते हैं बच्चे ना होते तो अच्छा था। कोई संतुष्ट नहीं है, ये सत्य है। गांव में रहने वाले लोग सोचते हैं शहर जाना चाहिए, बंबई देखना है। वो हिंदी फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्मों में हीरो होता है, गांव में बड़ा होता है, शहर चला जाता है, 15 मिनट के अंदर बड़ा अमीर व्यक्ति हो जाता है, उसका बंगला हो जाता है, कार हो जाती है, सूट बूट पहनकर वापस आता है गांव में। ये सब 15 मिनट में हो जाता है। तो पिक्चर देखकर लोगों को लगता है बंबई जाना चाहिए। पता नहीं आजकल कौन सी शहर दिखाते हैं, लेकिन पहले के पिक्चरों में तो एक ही शहर होता था, पता नहीं क्यों। कोई भी पिक्चर हो, वो गांव से शहर आया, वो वीटी स्टेशन दिखाते थे, बस वो बंबई में पहुंच गया। तो जो गांव में रह रहे वो शहर में जाना चाहता है, संतुष्ट नहीं है गांव में। और जो शहर में बंबई में रह रहे हैं वो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, वो बंबई में संतुष्ट नहीं है, उनके लिए न्यूयॉर्क अमेरिका अच्छा लगता। और जो अमेरिका में है वो लोग चांद पर जाना चाहते हैं। कोई कहीं संतुष्ट नहीं है कि जहां है वहां आराम से रहे। तो इसीलिए इन्होंने ऐसे जब श्राप दे दिया कि सूर्य निकलेगा नहीं, सूर्योदय नहीं होगा, तो फिर सारे जो देवता थे वो घबरा गए। और फिर ब्रह्मा जी ने जाकर देवी अनुसुईया से कहा कि आप जाकर उसको कहो, क्योंकि अगर कोई आकर कहेगा कि नहीं आप अपना ये वचन वापस ले लो, सूर्य को उदय होने दो, तो मतलब पति मर जाएंगे, तो वो कैसे वो स्वीकार करती। तो फिर देवी अनुसुईया को भेजा, तो अनुसुईया ने उसको समझाया, और फिर अनुसुईया ने उसको वचन दिया कि तुम चिंता नहीं करो, तुम अपना ये वचन वापस लो और तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, ये मैं वचन देती हूं। तो फिर इस तरह से देवी अनुसुईया ने उनकी रक्षा की थी। तो इसीलिए इनके सतीत्व का बहुत बहुत स्थानों पर वर्णन है, पतिव्रता का। तो श्रीमती सीता देवी को उन्होंने बहुत सा ज्ञान दिया। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि कैसे वो बताने लगी कि तुमने बहुत अच्छा किया जो अपने पति के साथ आई हो, अपने पति को छोड़ना नहीं चाहिए इत्यादि बहुत बताया। तो सीता देवी ने कहा ये सब मुझे मेरी माँ और मेरी सास पहले ही बता चुकी हैं, फिर भी आपने बताया, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद जब सब बातचीत हो गई तो देवी अनुसुईया ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। ऐसा होता ना, पहली बार मिल रहे हैं तो कुछ उपहार देना चाहिए। तो सीता देवी ने कहा बस आपने इतना ज्ञान दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं उपहार देना चाहती। तो उन्होंने सीता देवी को दिव्य फूल, अर्थात जो कभी मुरझाते नहीं है, ऐसे फूलों का हार और बहुत सारे गहने दिए। अभी जंगल में है, लक्ष्मण जी पहले ही गहने उठाकर थक गए थे, क्योंकि सीता देवी आई थी गहने पहनकर आई थी। सीता देवी ने सब निकाला नहीं था, निकालने जा रहे थे तो मना कर दिया गया था कि नहीं सीता ऐसे ही जाएगी, ये वनवासियों के वेश नहीं पहनेगी। तो अब सारे गहने पहन के तो नहीं चल रही होंगी, पैक करके दिया होगा लक्ष्मण जी बांधे। अब अनुसुईया ने और बहुत सारे दे दिए उनको, लक्ष्मण जी दूसरी भी पोटली बांधकर चल रहे होंगे, पता नहीं कैसे, पहले ही इतना है और उठा के चलना है, पैदल चलना है एक तो। लेकिन वो गहने जरूरी भी थे ना, आगे चलकर वही गहने तो फेंके तब तो भगवान राम ने देखा अरे यहां यहां से गए हैं। तो ऐसे अनुसुईया देवी ने उनको विदा किया, फिर अत्रि मुनि के द्वारा आगे फिर दंडकारण्य में प्रवेश किया। अब हम लोग विराध जो बात कर रहे थे कि कैसे दंडकारण्य में घुसकर भगवान ने पहले राक्षस का वध किया जिसका नाम था विराध। तो अब उन्होंने देखा कि सारे पशु बहुत भयभीत हैं और एक बड़ा विशाल व्यक्ति, बहुत बड़ा और भयानक, और उसके पास एक शूल था, त्रिशूल जैसा, और उसमें इतना वो बड़ा था कि उसमें तीन चार शेर, दो तीन चीते, हाथियों के सर और लोमड़ियां, वो सब लगी हुई थी। मतलब ऐसे मार मार के, जैसे हम लोग किसी में वो लगाता जाते ना, बाद में उसको फ्राई करेगा या जो भी रोस्ट करेगा जो है, तो ऐसे लगाकर घूम रहा था भगवान ने देखा, रामचंद्र जी ने। और फिर जब उसने इनको देखा तो क्या कहने लगा, विराट कहने लगा, अरे तुम लोग कौन हो, यहां पर आए हो, वेश तो साधुओं का है और साधु होकर साथ में एक स्त्री को लेकर घूम रहे हो, ये कैसे वैरागी हो तुम लोग, वेश तो वैरागियों का है और स्त्री को लेकर घूम रहे हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तुम्हारी स्त्री को मैं ले जाता हूं। तो उन्होंने सीता देवी को ले लिया विराट ने। जब राक्षस ने सीता को पकड़ लिया तो रामचंद्र जी एकदम दुखी हो गए विरह में, और तुरंत उन्होंने कहा लक्ष्मण से कि जिस चीज की इच्छा कैकई ने की थी वो लगता है अभी हो जाएगा। मतलब कह रहे थे कि कैकई ने सोचा था हम लोग 14 वर्ष वन में जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे, तो जिस चीज की इच्छा कैकई ने की थी लगता है अभी होने वाला है, इसी समय मुझे इतना दुख नहीं हुआ था जब मुझे अपना राज्य छोड़ना पड़ा, मेरे पिता की मृत्यु का मैंने समाचार सुना, लेकिन अब सीता को इस राक्षस के हाथ में देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो लक्ष्मण कहते हैं ये क्या आप अनाथों की तरह बात कर रहे हैं लक्ष्मण तो जल्दी क्रोध में आते हैं ना, तो लक्ष्मण बड़े क्रोध में आ गए। भगवान जब ऐसे कहने लगे हाँ अरे सीता को बचाना है, अरे बचाना है तो लक्ष्मण तो अभी तो मैं हूं ना, तो लक्ष्मण कहने लगे ये क्या आप अनाथों की तरह, आप सबके नाथ हैं और आप अनाथों की तरह बात कर रहे हैं। भगवान सच्ची दृष्टि में भगवान ही सबके नाथ हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, नाथ अनाथन काया जग में तुम बिन कौन सहारा। तो आप ये कैसे अनाथों की तरह बात कर रहे हैं, और इसको मारना है ना आपको। मैं बताऊं जब भरत आया था, लक्ष्मण कहते हैं जब भरत आया था तो मुझे बड़ा गुस्सा आया था, मैं मारने वाला था उसको। ये भी बात आप लोग जानते हैं कि जब भरत आ रहे थे तो कुछ आवाज आई, तो लक्ष्मण से भगवान ने कहा पेड़ पर चढ़ के देखो क्या है, तो पेड़ पर चढ़ के उन्होंने दूर देखा तो ध्वज दिखाई दिया अयोध्या का और सेना दिखाई दी, दिखाई मतलब धूल उड़ रही है, मतलब सेना आ रही है। तो लक्ष्मण ने कहा बस, लक्ष्मण ने कहा आप सीता देवी को लेके जाइए। भगवान ने कहा क्या हुआ बताओ तो सही, आप लेके जाइए सीता को, भरत आ रहा है आपको मारने के लिए, मैं देखता हूं, मैं अकेला ही उसको भी उसकी सेना को भी सबको समाप्त कर दूंगा। रामचंद्र ने कहा आने तो दो, तुम्हें कैसे बताओ मारने के लिए आ रहा, नहीं और किस लिए आएगा सेना लेकर, आना होता तो अकेले आता, ये सेना लेकर आ रहा है आपको मारने आ रहा, आप चिंता मत कीजिए आप जाइए मैं निपट गया। मैंने कहा नहीं तुम पीछे खड़े रहो पहले मैं देखता हूं। तो अब लक्ष्मण कहते वो उस सारा क्रोध अभी तक अंदर है, अभी मैं इसके ऊपर निकालूंगा वो क्रोध, आप चिंता मत करो मैं इसको मार दूंगा विराट को। तो उस समय जब सीता देवी वहां पर थी तो भगवान को बड़ा दुख हुआ। वैसे ये एक नियम है कि हमें समाज में स्त्रियों की रक्षा, गायों की रक्षा, बच्चों की रक्षा, वृद्धों की रक्षा और ब्राह्मणों की रक्षा करनी चाहिए, ये अनिवार्य है। अब रक्षा करने का अर्थ क्या है, क्या केवल उनके शरीर को बचाना है, नहीं। ये कहा जाता है कि जब हम कहें कि बच्चों की रक्षा कीजिए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल उनके शरीर को बचाए रखिए, उसका अर्थ ये है कि उनको ऐसी संस्कृति दीजिए, क्योंकि वो आगे आने वाले भविष्य हैं, उनको वो संस्कृति दीजिए, वो संस्कार दीजिए, वो ज्ञान दीजिए जिससे आने वाला समाज अच्छा समाज बन सके, ये बच्चों की रक्षा करने का अर्थ है। तो हर व्यक्ति को इन 5 लोगों की रक्षा अनिवार्य है करना। तो बच्चों की रक्षा मतलब उनको वो संस्कार देने चाहिए। ये कर्तव्य है हमारा, अगर आज हम अपना ये कर्तव्य नहीं करेंगे तो कल समाज में हमें ही इन्हीं बच्चों के द्वारा जो उत्पात होगा, जो अधर्म फैलेगा, उसको सहन करना होगा। और आज ही हम लोग देखते हैं, माता पिता कहते हैं पता नहीं ये मेरा बच्चा कैसे बिगड़ गया, मैंने तो सब अच्छा किया था, बिगड़ कैसे गया? अरे बिगड़ कैसे गया, आपकी गलती है। उसको बचपन से केवल फिल्मों के गाने सिखाओगे, बचपन से केवल धन दे देकर मैकडोनल्ड्स में भेजोगे, बचपन से केवल उसको मोबाइल देकर उसको क्या होता है जो भी गेम्स खिलाओगे, तो क्या बनेगा बड़ा होकर? उसको क्या पता रामचंद्र जी कौन है और कृष्ण कौन है, गाय कौन है, उसको ये नहीं पता चलेगा आगे चल के। बड़े शहरों में, बंबई में ये नियम हो गया है कि शहर की सीमा के अंदर कोई गाय नहीं रख सकता, आप जानते हैं, शहर की सीमा के अंदर कोई गाय नहीं रख सकता। तो जितने भी बच्चे अब बड़े हो रहे हैं उन्होंने कभी गाय नहीं देखी है। बच्चे से बड़ा होकर पूछा जाएगा दूध कहां से आता है, बोले मिल्कमैन देके जाता है या डेयरी से आता है, उनको क्या पता गाय का, देखी नहीं कभी गाय। तो बच्चों को संस्कार देना, ये बच्चों की रक्षा करना है, उनको अच्छे संस्कार। ये जान लीजिए कि वो भविष्य है हमारा, तो हमारा भविष्य हम अच्छा बनाना चाहें, सुसंस्कृत बनाना चाहें, धर्म का बनाना चाहें, तो बच्चे का संपूर्ण विकास की चिंता होनी चाहिए। और बच्चे का संपूर्ण विकास कैसे होता है? केवल बुद्धि से नहीं, केवल भावना से नहीं, आध्यात्मिकता से होता है। आजकल समाज में बच्चे की प्रगति देखी जाती है आईक्यू से, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, कितना इंटेलिजेंट है वो। फिर वैज्ञानिकों ने कहा कुछ साल पहले कि नहीं नहीं आईक्यू पूरा नहीं है, ईक्यू होना चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन, बच्चे की भावनाओं को भी देखना चाहिए, तब उसका पूर्ण विकास होता है। लेकिन वो एक चीज को भूल गए और अब उन्होंने उसको स्वीकार किया एसक्यू। जब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं है बच्चे की पूर्ण प्रगति नहीं होती है। इसीलिए आप में से जो माता पिता हैं और जो बनने वाले हैं या जो बन चुके हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, नहीं हैं, हैं जो भी हैं, अगर आप नहीं हैं तो और बहुत सारे बच्चे समाज में हैं, प्रयास कीजिए उनको संस्कार देने का। ये हमारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को भूलेंगे तो आगे आने वाला समाज हमें दोष देगा। जैसे वो कहानी बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, एक बच्चे ने पेंसिल चुरा ली जाकर स्कूल में, वापस आया अपनी माँ को दिखाया, माँ ने कहा क्या किया, पेंसिल चुरा के लिया, माँ ने कुछ नहीं कहा, ठीक है बच्चा है पेंसिल ले आया, क्या बड़ी बात है। और बड़ी चीजें लाने लगा, चोर बन गया, इतना बड़ा हो गया कि उसको फांसी की सजा हो गई। और जिस दिन फांसी की सजा हुई उसने उसको पूछा कल तुम मरने वाले हो, कोई आखिरी इच्छा? बोले माँ से मिलना है। माँ आई तो कुछ कहने लगा, माँ को सुनाई नहीं दिया, कान पास में किया, कान काट लिया उसने माँ का। माँ ने कहा ये क्यों किया? तो उसने कहा कि जिस दिन पहली बार मैं पेंसिल लेकर आया था, अगर उस दिन तुमने मुझे रोक दिया होता तो आज मैं यहां नहीं होता। तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें दोष नहीं दे, इसीलिए अपने कर्तव्य को हमें पूरा करना है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनको आध्यात्मिकता प्रदान करना, उनमें भगवान के प्रति, अपने सभ्यता के प्रति आदर का भाव लाना, ये बच्चों की रक्षा करना है। तो बच्चों की रक्षा होनी चाहिए, स्त्रियों की रक्षा होनी चाहिए। तो स्त्रियों की रक्षा कैसे? केवल उनके शरीर को? हाँ, उनके शरीर, जैसे बच्चों के शरीर को संभालना है, स्त्रियों को भी संभालना है। लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर ऐसे गुण देने हैं, जैसे बच्चों में हमें आगे आने वाले, लेकिन स्त्रियों में हमें अभी वो संस्कार अपने बच्चों को दे सकें। क्योंकि स्त्रियां ये पहली गुरु होती हैं बच्चे के लिए, मां पहली गुरु होती है, सबसे पहला शब्द बच्चा मां बोलता। तो इसीलिए मां को गुरु होना है तो उसको ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए स्त्रियों को भी भक्ति में लगाए रखना, भक्ति की क्रियाओं में लगाए रखना, जिससे स्त्रियां दूषित ना हो। आज जो समाज में स्त्रियों का स्थान है, जहां स्त्री मुक्ति, नारी मुक्ति के नाम पर स्त्रियों ने अपने जो कार्य हैं उनको त्याग दिया है, ये उनकी रक्षा नहीं है। शास्त्रों में कहा गया कि स्त्री को सदैव रक्षा में रहना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम स्त्रियों के प्रति कोई पक्षपात कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं। इसका अर्थ ऐसे है जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कैसे माँ सुरक्षा में रखती है, अगर खेलने के लिए भी छोड़ती है तो ध्यान रखती है बाहर नहीं जाए। छोटा सा बच्चा होता है तो उसको साइड में जब लेटा होता है तो तकिए लगा दिए जाते हैं ताकि गिरे नहीं नीचे। इसी तरह स्त्रियों को संरक्षण दिया जाता है, कोई पक्षपात नहीं है। और फिर गायों की रक्षा होनी चाहिए, और गायों की रक्षा तो उन्हें बचाकर, जैसे कटने के लिए जाती हैं गाय उनको बचाकर, उनके जितने भी गुण हैं उनका प्रचार करके गायों की रक्षा। गायों की रक्षा भी केवल उनके शरीर को बचाकर नहीं होती, वो तो एक मार्ग है। लोग गायों को कटने के लिए क्यों भेजते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि अब गाय दूध नहीं दे रही है, बेकार हो गई है हमारे लिए, बूढ़ी हो गई है, बेच दो इसको, कुछ पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर वही हम हर गांव में जाकर हर व्यक्ति को सिखलाएं कि गाय मरने तक उपयोगी है, उसका गोमूत्र, गोबर, ये बहुत उपयोगी है मानव के लिए। आपको गोमूत्र का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। गोमूत्र ये जब हम शरीर में जाता है, हमारे स्टॉल में भी गोमूत्र मिलता है, डिस्टिल्ड काउ यूरिन, क्योंकि जो खाली काउ यूरिन होता है गोमूत्र, वो पिया नहीं जा सकता, वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको डिस्टिल किया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक रहे। तो अगर 2 चम्मच रोज सुबह आप पी लें गाय का अर्क, जिसे कहते हैं गो अर्क या गोमूत्र, ये जितने भी आपके शरीर में ऑर्गन्स हैं, जितने भी आपके शरीर के अलग अलग हिस्से हैं, उन सबको शुद्ध करता है। एक व्यक्ति ने एक उदाहरण से दिखलाया, उसने एक ग्लास में पानी लिया, शुद्ध साफ पानी, और उसमें थोड़े चावल डाल दिए। तो उसने कहा कि ये जो ग्लास है, ये पानी जो है, ये हमारे शरीर की तरह है, और जो चावल है वो शरीर के अलग अलग अंग हैं। और अब उसने उसमें बीटाडीन डाली, बीटाडीन जानते हैं आप, वो जो चोट लग जाती है तो लगाया जाता है, वैसे वो पॉइजन है, उसमें लिखा होता है बॉटल पर ये पॉइजन है। तो उसने वो पॉइजन डाला उसमें, 2 चम्मच पॉइजन डाला, तो पानी पूरा लाल लाल हो गया, वो जो उसका कलर होता, कलर बदल गया। और उसने वो फिर वो निकाल के दिखाया, जो चावल थे वो भी एकदम काले हो गए, डार्क काले, केवल डालने से, डाला और थोड़ा सा मिलाया, डार्क काले। अब उसने उसमें 2 चम्मच गोमूत्र डाला, गोमूत्र अर्क, और जैसे ही उसने डाला, जितना वो कालापन था वो सब साफ हो गया, एकदम स्वच्छ हो गया, और वो जो चावल थे वो सारे स्वच्छ हो गए। उसने बताया यही है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, सालों से गलत खाना खा के, गलत चीजें खा के, शराब पी के, सिगरेट पी के, या और भी अन्य चीजें करके, वो सारे अंग सड़ चुके हैं, लेकिन जब गोमूत्र जाता है तो उसको पुनः जीवन दे देता है। और इतना ही नहीं, उसने और एक बात उसमें दिखाई, अभी उसने गोमूत्र डाला हुआ था उसमें, और फिर 2 चम्मच बीटाडीन डाला उसमें, पॉइजन, फिर 2 चम्मच डाला, लेकिन आश्चर्य की बात, इस बार पानी का रंग नहीं बदला, कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने कहा इसी तरह हमारे शरीर में जब हम रोज ये 2 चम्मच केवल गोमूत्र लेते रहते हैं, तो हमारे शरीर में अगर हमारा कोई विषैली चीजें चली भी जाती हैं तो उसका कोई असर नहीं होता। तो इतना शक्तिशाली है गोमूत्र। ये तो हमने केवल गोमूत्र का बताया, गोबर, आजकल लोगों को प्रसाधन, बड़े वो सौंदर्य प्रसाधनों का बड़ा शौक है, नए नए शैंपू, नए नए साबुन, गोबर से सबसे अच्छा साबुन बनता है, सही बता रहे, गोबर से बने हुए साबुन से नहाएंगे 10 मिनट बाद इतनी अच्छी खुशबू आएगी शरीर से, सही है। अब प्रयास करके देखिए, ये गाय का महत्व है। पहले नियम था कि अगर किसी को यज्ञ करना है तो उसको गोबर से नहाना पड़ता था, तब गोबर से नहा के यज्ञ में बैठते थे, इतना शुद्ध माना गया है गोबर। भगवान श्री रामचंद्र ने ये किया, यज्ञ में बैठने से पहले गोबर से स्नान करना पड़ता है। ये नियम है। आप लोग तो अभी गोबर देख के छी छी करते हैं, ये क्या है, बदबू आती है। वो जो कॉस्मेटिक्स लगाते हैं उसकी बदबू नहीं आती है सब लोगों को, सारा मुंह पे लीपा पोती कर लेते हैं, काला गोरा हो जाता है जो भी है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते थे, हम लोग अपने आप को कृष्ण का भक्त कहते हैं, कृष्ण क्या करते थे, गोबर में खेलते थे, गोमूत्र में खेलते थे, छोटे से बछड़े की पूंछ पकड़ लेते थे, बछड़ा डर के भागता था और जैसे भागता था तो सब पूरे गोबर गोमूत्र में से कृष्ण को लेते हुए भागता था, कृष्ण को आनंद आता था। तो इसीलिए सच्चा अगर रक्षा हमें गायों की करनी है तो एक तरफ हम गायों को बचाएं कटने से, साथ साथ इस बात का प्रचार करें, क्योंकि जब किसान को पता चलेगा कि ये गाय भले दूध दे या ना दे लेकिन इसका गोमूत्र गोबर बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ही चीज आपको बताते हैं, गाय का दूध कितना रुपए लीटर है कोई बता सकते हैं, आप लाते हैं हाँ? 50 रुपए, 50 रुपए लीटर गाय का दूध है, ठीक है सब लोग मानते हैं। गोमूत्र कितना रुपए लीटर है कौन बताएगा, 180 रुपए, 180 रुपए लीटर बिकता है गोमूत्र। आपको विश्वास नहीं तो हमारे स्टॉल में जाके देख लीजिए, हम ही लोग बेचते हैं और लोग खरीदते हैं। तो गोमूत्र 180 रुपए और गाय का दूध 50 रुपए, तो दूध देने वाली गाय बेहतर है या ना देने वाली गाय बेहतर है। इन चीजों को फैलाएं, लोगों को पता चले कि गायों का, अभी हम लोगों ने जब प्रसादन बनाने शुरू किए गायों से दवाइयां, इस समय 25 प्रकार की दवाइयां हमारे बेलगाम मंदिर में बनती हैं, कुछ यहां पर भी है आपके लिए उसमें स्टॉल में। और जो गोमूत्र अर्क है वो क्या कहते हैं, रामबाण दवाई है, बस 2 चम्मच सुबह पीना है खाली पेट, कोई बीमारी नहीं। तो देखिए इन चीजों को फैलाना ये गायों की रक्षा है। तो बच्चों की रक्षा हो गई, स्त्रियों की रक्षा हो गई, गायों की रक्षा, वृद्धों की रक्षा कैसे की जाती है। वृद्धों की रक्षा उन्हें हॉस्पिटल में ले जाकर नहीं की जाती कि हम उनको बचा ले मरने नहीं देंगे। वृद्धों की रक्षा की जाती है उनसे सीख कर परंपराओं को बनाए रखकर, क्योंकि ये जो पारिवारिक परंपराएं हैं, समाज की परंपराएं हैं, इनको ये वृद्ध हैं जो हमें प्रदान करते हैं, इसीलिए वृद्धों को बचाना चाहिए। एक समाज है आज भी दुनिया में जो जब उस समाज के लोग वृद्ध हो जाते हैं तो उनको खेल में मार दिया जाता है। जो युवा होते हैं वो घोड़े पर बैठकर आते हैं, वो भागता है और उसको खेल खेल में मारा जाता है, क्योंकि वो वृद्ध हो गया, वो बेकार हो गया, उसको घर से बाहर निकाल दो, फेंक दो उसको। वृद्धों से हमें ज्ञान मिलता है, वृद्धों से परंपराएं मिलती हैं, वृद्धों से आशीर्वाद मिलते हैं जिनसे हम जीवन में सफल हो सकते हैं, इसलिए वृद्धों की रक्षा करनी चाहिए। और ब्राह्मणों की, क्योंकि ब्राह्मण ये आध्यात्मिक संस्कृति को प्रदान करते हैं, तो उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं, आध्यात्मिक संस्कृति को अपने जीवन में अपना के हम ब्राह्मणों की रक्षा कर सकते हैं। तो इसीलिए स्त्रियों की रक्षा, बच्चों की रक्षा, गायों की रक्षा, वृद्धों की रक्षा और ब्राह्मणों की रक्षा अनिवार्य है, ताकि हमारा समाज अच्छी तरह से बना रहे और चलता रहे। हम लोग इसको आधुनिकता के नाम पर एक केवल भोग प्रवृत्ति वाला समाज नहीं बना दें। आधुनिकता केवल हमें वही सिखा रही है। क्या है आधुनिकता? आधुनिकता में कहा जाता है कि जितना भोग कर लो वो अच्छा है, इसको आधुनिकता माना जाता है। वैदिक सभ्यता में शाम को सोया जाता है, रात को, आधुनिकता में रात को डिस्को में जाया जाता है। तो ये कोई समाज नहीं है, पशु समाज है। जंगल में पशु रात में बाहर निकलते हैं पानी पीने के लिए, जानते हैं आप लोग? तो ये जो रात में बाहर जाना है ये पशु की प्रवृत्ति है, मनुष्य को तो सोना चाहिए रात में आराम से। तो इसीलिए इन चीजों की रक्षा की आवश्यकता है। तो खैर सीता देवी, अब समय काफी हो गया, अगले कल मारें विराट को या आज मार दें, आप लोग का क्या इच्छा है? हाँ अच्छा, कितने लोग कहते हैं अभी 2:16 हो गए, हम 16 मिनट ज्यादा बोल चुके हैं, तो आप में से कितने लोग आज उस लीला को पूरा करना चाहते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। और जिन लोगों ने नहीं भी किया उनको बैठना पड़ेगा। नहीं, इसको रोक देते हैं, कल शाम को पूरा करेंगे। आप लोग काफी दूर से भी आते होंगे। हमने सोचा था बहुत सारी लीलाएं हो जाएंगी, लेकिन समय नहीं मिला। खैर, विराट की संक्षेप में जल्दी से पूरी कर देते, 5 मिनट में। तो विराट ने पकड़ लिया और ऊपर से आरोप लगाने लगा, रहे तुम लोग ये त्यागी वैरागी होकर ये धनुष बाण लेकर घूम रहे हो, स्त्री को साथ में लेकर घूम रहे हो, ये पापमय जीवन कर रहे हो, ये स्त्री मेरी पत्नी बनेगी, इसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा, और तुम लोगों को मैं एक मौका देता हूं, चले जाओ वापस, तुमको मारूंगा नहीं, अगर रुके तो मार दूंगा। तो लक्ष्मण ये सब सुन रहे हैं, आप सोचिए उनको क्या हो रहा होगा। तो उस समय फिर उसने परिचय पूछा विराट ने, तुम हो कौन तुम लोग। तो भगवान उस समय भी देखिए नम्रता कितनी होनी चाहिए, अरे कोई उनकी पत्नी को उठाकर ले गया है, मारने की बात कर रहे हो, भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, कौन है पूछा। तो मैं दशरथ का पुत्र हूं राम, और ये मेरा भाई है लक्ष्मण, तुम कौन हो। तो उस समय उसने कहा कि मेरा नाम विराट है, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला है कि किसी शस्त्र से मैं मरूंगा नहीं। देखिए ब्रह्मा जी जब जिसको मन में आए वो वरदान दे देते हैं, सोचते नहीं है आगे पीछे क्या होगा। हिरण्यकशिपु को दे दिया है ना, पशु से नहीं मरोगे, मनुष्य से नहीं मरोगे, ऊपर नहीं मरोगे, नीचे नहीं मरोगे, अंदर नहीं मरोगे, बाहर नहीं मरोगे, दिन में नहीं मरोगे, रात में नहीं, नहीं नहीं नहीं, भगवान ने फिर भी मार दिया उसको। और जब भगवान ने मारा, नरसिंहदेव बड़े क्रोध में थे, बाद में क्रोध शांत हो गया, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना अर्पण की, तो भगवान जानते क्या कहा, भगवान ने उनका तुम्हारी वजह से मुझे ये रूप लेना पड़ा, आधा नर और आधा सिंह, तुमने ही कहा था ना, वरदान दिया था, अगली बार नहीं देना, भागवत में भगवान ने चेतावनी दी, अगली बार संभालना देना नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी फिर भी वो भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी से मुझे वरदान है कि कोई शस्त्र से मैं नहीं मरूंगा, कोई मुझे काट नहीं सकेगा इत्यादि। तो खैर भगवान से फिर युद्ध शुरू हुआ, बहुत भयानक युद्ध हुआ, और उसने फिर इन दोनों को उठा लिया, सीता देवी को रख दिया और दोनों को उठा लिया, और उठाकर भागने लगा अंदर की ओर। तो लक्ष्मण ने रामचंद्र जी की ओर देखा, क्या करें अभी, मारे या नहीं। तो रामचंद्र जी बोलते हैं, वैसे भी हम लोगों को अंदर ही जाना था ना, ये लेके जा रहा है। तो चलते हैं। सीता देवी चिल्लाई पीछे से, तो उनको तो नीचे रख दिया था, ये रामचंद्र जी ठीक है, फ्री की राइड मिल रही है, चलना नहीं पड़ेगा, अंदर तक चले जाते, वहां जाके मार देंगे इसको। तो सीता देवी चिल्लाई, कह रहे अरे मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। विराट से कहा कि मुझे ले चलो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो यहाँ पर, मेरे पति को छोड़ दो, उनको मत मारो, चाहिए तो मुझे ले जाओ। तो रामचंद्र जी को ध्यान है, अच्छा सीता भी है, चलो। फिर उसके बाद उन्होंने एक हाथ लक्ष्मण ने काटा, एक हाथ रामचंद्र जी ने काटा, लेकिन वो मरने वाला नहीं था, ब्रह्मा जी का उसको वरदान है शस्त्र से मरेगा नहीं। तो बहुत प्रयास किया लेकिन वो मरा नहीं, पांव भी काट दिए उसके तो भी नहीं मरा। तो फिर रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण से, एक काम करो, बहुत बड़ा गड्ढा खोदो, इसकी ऐसे ही जिंदा ही इसको गाड़ देंगे, इसकी समाधि बना देंगे ऐसे, तो गड्ढा खोदो। तो गड्ढा खोदने लगे, गड्ढा खोदने के बाद जब मारने वाले मतलब उसको दबाने वाले थे, उस समय उसने बताया कि दरअसल वो एक विद्याधर है, विद्याधर मतलब देवताओं में से एक है, उसको दुर्वासा मुनि का श्राप मिला था इसीलिए ऐसा हुआ, लेकिन दुर्वासा मुनि ने कहा था कि रामचंद्र जी आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा, तो इसीलिए मैं बड़ा आभारी हूं आपका। और उस समय उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण की। जब वो उस शरीर से बाहर आ गए विद्याधर के रूप में, उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना भगवान को अर्पण की। उन्होंने कहा भगवान से कि नमस्कार करते हुए भगवान को कहा कि आप ही विशुद्ध बुद्धि मूर्तये, आपका जो स्वरूप है वो एकदम विशुद्ध है, शुद्ध है। और इस तरह उन्होंने प्रणाम किया भगवान को, आत्मा रामाय रामाय सीता रामाय वेधसे, और फिर वो अपने स्थान पर चले गए। तो ऐसे भगवान ने ये दंडकारण्य में प्रवेश करते ही पहले विराध नाम के राक्षस का वध किया। अब आगे भगवान जाएंगे अगस्त्य मुनि के आश्रम और वहां से फिर पंचवटी की ओर। अगस्त्य मुनि के आश्रम और अन्य आश्रमों में भगवान करीब 10 वर्ष तक रहे, एक ही आश्रम में नहीं, अलग अलग आश्रमों में घूमते घूमते फिर बाद में अगस्त्य मुनि के आश्रम आए और अगस्त्य मुनि ने उन्हें कहा अब तुम पंचवटी की ओर जाओ। तो पंचवटी में तो बहुत सुंदर लीलाएं हुई थी, सुंदर लीलाएं, किसी सुंदरी का पंचवटी में हुआ था। तो अब पंचवटी की ओर भगवान जाएंगे थोड़े से आश्रम होने के बाद, और पंचवटी जाने से पहले उन्हें एक व्यक्ति मिलते हैं भगवान को, एक बहुत बड़े भक्त भगवान के, और वो वचन देते हैं कि मैं सीता देवी की रक्षा करूंगा। तो कौन थे वो, उसका वर्णन हम लोग कल शाम को करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समय काफी हुआ है इसलिए प्रश्नोत्तर नहीं करेंगे, सूचनाएं अगर कुछ हैं तो सूचना दे सकते।